नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका पहली नवंबर से चीन की वस्तुओं पर 155% टैरिफ लागू करेगा। पूरे विश्व में गुजराती समुदाय आज अपना नया साल बेस्तु वर्ष मना रहा है और महिला क्रिकेट विश्व कप में कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका ने डकवर्थ लुइस के आधार पर पाकिस्तान को 150 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और अमरीका की मजबूत और स्थायी साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण से आलोकित करते रहे हैं और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह में भाग लिया तथा भारतवासियों और अमरीका में रह रहे भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। अमरीका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक महान व्यक्ति और मित्र बताया। साथ ही उन्होंने व्यापार और क्षेत्रीय शांति क्षेत्र में अमरीका भारत संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि बीजिंग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की उनकी इच्छा के बावजूद अमरीका पहली नवंबर से चीनी वस्तुओं पर 155% शुल्क लगाएगा। एक रिपोर्ट।
रूस के सबसे बड़े तेल आयातक के रूप में चीन की भूमिका के बारे में अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ये शुल्क वर्षों से चली आ रही एक तरफा व्यापारिक तौर तरीकों का एक आवश्यक जवाब है। उन्होंने कहा कि इससे अमरीका को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछली सरकारों ने चीन को अमरीका का आर्थिक शोषण करने दिया और अब कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। ये कदम दूसरे दर्जे के एक व्यापक शुल्क दृष्टिकोण के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ऊर्जा व्यापार के माध्यम से यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वाले देशों को लक्षित करना है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गजा युद्ध विराम योजना को लेकर गहरी आशा व्यक्त करते हुए इसे टिकाऊ और उम्मीद से बेहतर बताया है। ये बात उन्होंने आज इसराइल की यात्रा के दौरान कही। उनकी ये यात्रा इसराइली हवाई हमलों में 26 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के दो दिन बाद हुई है। युद्ध विराम समझौते को मजबूत करने के ट्रंप प्रशासन के प्रयासों के अंतर्गत वेंस की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हमास के अधिकारी काहिरा में इसराइल के साथ लंबित मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत में शामिल हुए हैं। 10 अक्टूबर को युद्ध विराम लागू होने के बाद से ही इसका बार बार उल्लंघन हो रहा है, जिसमें फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने दो इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी और रविवार को इसराइल ने गजा पर बमबारी की। पूरी दुनिया में आज गुजराती समुदाय नववर्ष मना रहा है। हमारी संवाददाता अपर्णा खूंट ने बताया है कि गुजरात में बेस्तु वर्ष नाम से मनाया जाने वाला नववर्ष हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन मनाया जाता है।
नववर्ष की शुरुआत ईश्वरीय आशीर्वाद लेने की पवित्र परंपरा से होती है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग अपने नए साल को शांति और समृद्धि से भरने की प्रार्थना कर रहे हैं। लोग अपने करीबी रिश्तेदारों के घर पहुंचकर उन्हें नूतन वर्षाभिनंदन यानी नववर्ष की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो वही व्यापारी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आगामी वर्ष की वित्तीय सफलता के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने हेतु अपने नए खाता पुस्तकों की पारंपरिक पूजा भी कर रहे हैं।
नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें आम चुनावों की तैयारियों और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि ब्लूवाटर स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई इस बैठक में भंग प्रतिनिधि सभा के कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री कार्की ने बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहयोग मांगा। नेताओं ने सरकार से चुनाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि अंतरिम सरकार कानून के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनरेशन जेड आंदोलन की भावना से अलग नहीं जाएगी। श्रीमती कार्की ने कहा कि सरकार उचित प्रक्रियाओं और कानून के दायरे में रहकर काम करेगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांसीसी अभियोजक लॉर बेकवाउ ने पेरिस के लुअर संग्रहालय में करीब 88 मिलियन यूरो मूल्य के मुकुट के रत्नों की चोरी हो जाने की जानकारी दी है। इन रत्नों का ऐतिहासिक मूल्य इससे कहीं अधिक है। रविवार की सुबह चार संदिग्ध लोगों ने क्रेन की मदद से गैलरी डियोपोलोन में सेंध लगाकर इस चोरी को अंजाम दिया। महारानी मैरी लुईस और महारानी यूजीनी से संबंधित कलाकृतियों सहित फ्रांसीसी राजघरानों से जुड़ी 8 दुर्लभ कलाकृतियां भी चोरी हो गई। 100 से ज्यादा जांचकर्ता इस मामले की जांच कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध के समाधान पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की योजनाएं स्थगित कर दी गई हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निकट भविष्य में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की कोई योजना नहीं है। पिछले बृहस्पतिवार को ट्रंप ने कहा था कि वो और रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा के लिए 2 हफ्तों के भीतर बुडापेस्ट में बातचीत करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव के बीच इस हफ्ते एक तैयारी बैठक होने वाली थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों के बीच बातचीत सार्थक रही और अब इस बैठक की कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की कि बातचीत क्यों स्थगित की गई। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP कमांडर काजिम पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम घोषित किया है। माना जा रहा है कि काजिम हाल ही में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर की हत्या में शामिल था। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कोरम जिले का रहने वाला काजिम पारा चिनार जा रहे सैन्य काफिलों और शिया समुदाय के यात्री वाहनों पर हमलों में भी शामिल था। उस पर कोरम के आयुक्त जावेदुल्ला महसूद की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की अभियोजन टीम ने सेना को चेतावनी दी है कि अगर उनके 15 सेवारत अधिकारियों को कल अदालत में पेश नहीं किया गया तो उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। ICTBD के अभियोजक गाजी MH तमीम ने संवाददाताओं को बताया कि अगर वे कल अदालत में पेश नहीं होते हैं तो न्यायाधिकरण एक नई तारीख तय करेगा और उनके सम्मान के साथ नोटिस 2 अखबारों में प्रकाशित किए जाएंगे। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
दक्षिण अफ्रीका ने कल रात कोलंबो में खेले गए ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मैच में पाकिस्तान को 150 रन से हरा दिया। वर्षा बाधित मैच में दक्षिण अफ्रीका ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर पाकिस्तान को पराजित किया। बारिश के कारण मैच को 40-40 ओवर का कर दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने लॉरा वॉल्टवाइट के 90 रन, मारिजान कॉप के 68 रन और सुने लुईस के 61 रन की बदौलत 9 विकेट पर 312 रन बनाए। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है और पाकिस्तान को प्रतियोगिता से बाहर होना लगभग तय हो गया है। उधर बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन फ्रेंच ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। कल खेले गए मुकाबले में आयरलैंड के नेहत गुयेन ने लक्ष्य सेन को 21-7, 21-16 से पराजित किया। हालांकि पिछले सप्ताह डेनमार्क ओपन में उन्होंने नेहत को पराजित किया था, लेकिन पेरिस में उन्हें अनफोर्स्ड एरर और लैड नहीं बन पाने के कारण हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम में उनकी शुरुआत खराब रही और संघर्ष के बावजूद वो वापसी नहीं कर पाए। विश्व दर्पण के लिए मैं नवीन सक्सेना।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका 1 नवंबर से चीन की वस्तुओं पर 155% टैरिफ लागू करेगा। पूरे विश्व में गुजराती समुदाय आज अपना नया साल बेस्तु वर्ष मना रहा है। और महिला क्रिकेट विश्व कप में कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका ने डकवर्थ लुईस के आधार पर पाकिस्तान को 150 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।